नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति के लिए अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता इस्लामाबाद में जारी। सरकार ने दोहराया, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए देशभर में कार्रवाई जारी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। प्रधानमंत्री ने तुष्टीकरण को समाप्त करने के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का वायदा किया। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने लोगों से उनकी पार्टी पर भरोसा करने को कहा। असम, केरल और पुदुच्चेरी विधानसभा चुनावों के दौरान 22 देशों के प्रतिनिधियों ने भारत की चुनाव प्रक्रिया की सराहना की। और आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हराया। चेन्नई में एक अन्य मैच में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति के लिए अमरीका और ईरान के बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में वार्ता जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना ने बताया कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल के हमलों में कमी और अन्य पूर्व शर्तें मान लिए जाने के बाद अमरीका, ईरान और पाकिस्तान के बीच त्रिपक्षीय वार्ता शुरू हो गई है। ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी के अनुसार वार्ता के एजेंडा में प्रमुख रूप से लेबनान में युद्ध विराम लागू करने, अमरीका द्वारा जब्त की गई ईरानी संपत्तियों को वापस करने और होर्मुज जलडमरू मध्य पर चर्चा शामिल है। इस बीच ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका वार्ता के दौरान इसराइल के हितों को प्राथमिकता देता है तो कोई समझौता नहीं होगा। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर खलीबाफ के नेतृत्व में ईरानी प्रतिनिधिमंडल और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्ति पर वार्ता के लिए पाकिस्तान में है। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
सरकार ने दोहराया है कि देश में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। कल 51,50,000 से ज्यादा सिलेंडर वितरित किए गए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए देश भर में कार्रवाई के तहत कल 3,400 से ज्यादा छापे मारे गए। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने 214 एलपीजी वितरकों पर जुर्माना लगाया है और 55 वितरकों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
30 मार्च से अब तक छात्रों और प्रवासी मजदूरों को 5 किलोग्राम के 12 लाख से अधिक एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री की गई है। उर्वरक संयंत्रों के कुल गैस आवंटन में 5% की और वृद्धि की जा रही है। मार्च से अब तक लगभग 4,15,000 पीएनजी कनेक्शन चालू किए गए हैं। करीब 4,55,000 अतिरिक्त ग्राहकों ने नए कनेक्शनों के लिए पंजीकरण कराया है। अब तक 26,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने एलपीजी कनेक्शन वापस किए हैं। इस बीच भारतीय ध्वज वाले पोत जग विक्रम ने आज होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया। इसके 15 अप्रैल तक मुंबई पहुंचने की उम्मीद है। उधर समूचे खाड़ी क्षेत्र में भारतीय दूतावास भारतीय समुदाय के लोगों के साथ निरंतर संपर्क में है। 28 फरवरी से अब तक पश्चिम एशिया से लगभग 8,71,000 भारतीय वापस आए हैं। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
सरकार ने डीजल पर निर्यात शुल्क 21.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 55.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने सूचित किया है कि विमानन टर्बाइन ईंधन पर भी शुल्क 29.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 42 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल पर निर्यात शुल्क 0 रहेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज अपने संयुक्त अरब अमीरात दौरे की शुरूआत भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत के साथ की। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों के कल्याण और उनकी सुरक्षा के लिए किए गए सरकार के प्रयासों के बारे में जानकारी दी। डॉ. जयशंकर अपनी यात्रा के दौरान संयुक्त अरब अमीरात के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के बीच सहयोग की समीक्षा भी करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विश्वास व्यक्त किया है कि हाल ही में घोषित युद्ध विराम पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त करेगा। श्री गोयल ने सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्री माजिद बिन अब्दुल्ला अल कासबी के साथ वर्चुअल बातचीत के दौरान ये बात कही। श्री गोयल ने बढ़ते हुए व्यवधानों और अस्थिरता के बावजूद आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू रूप से चलाने के सऊदी लोगों के दृढ़ संकल्प की सराहना की। उन्होंने मौजूदा संघर्ष के दौरान सऊदी अरब में हुए हमलों की निंदा की और भारतीय समुदाय की सुरक्षा के लिए सऊदी अरब के प्रयासों की भी सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। सभी प्रमुख दलों के नेता जनसभाएं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कठुआ, जांगीपुर और कुशमंडी में 3 जनसभाएं की। प्रधानमंत्री ने तुष्टीकरण को समाप्त करने के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का वायदा किया।
राष्ट्र की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। भाजपा का संकल्प है बंगाल में UCC लागू कर तुष्टीकरण की राजनीति को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। अब बंगाल फैसला कर चुका है अपनी अस्मिता, अपनी पहचान और अपने भविष्य के लिए। अब बंगाल आशोल परिवर्तन करके रहेगा।
श्री मोदी ने आगामी विधानसभा चुनाव को पश्चिम बंगाल की पहचान और भविष्य की रक्षा की लड़ाई के रूप में पेश किया। प्रधानमंत्री ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति और घुसपैठियों के समर्थन का आरोप लगाया। श्री मोदी ने तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप भी लगाया। प्रधानमंत्री ने सिलीगुड़ी में बिहार मोड़ से स्टेशन मोड़ तक एक रोड शो में भी भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह ने पुरुलिया और बाकुंडा में जनसभाओं को संबोधित किया। श्री शाह ने घुसपैठ का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा के सत्ता में आने पर 45 दिनों के भीतर सीमा पर कांटेदार बाड़ लगा दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के सत्ता में आने के 45 दिनों के भीतर राज्य सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के लाभ दिए जाएंगे। श्री शाह ने तृणमूल सरकार द्वारा केंद्रीय निधियों के दुरुपयोग की आलोचना की और आदिवासी समुदायों के लिए विकास का संकल्प लिया। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने बाकुंडा, पश्चिम मेदिनीपुर और झाड़ग्राम में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से उन पर भरोसा रखने और TMC को वोट देने का आह्वान किया। 22 देशों के प्रतिनिधियों ने असम, केरल और पुदुचेरी में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान भारत की चुनाव प्रक्रिया की सराहना की है। निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम 2026 के तहत 38 प्रतिनिधि 2 दिवसीय दौरे पर भारत आए थे। आयोग ने एक बयान में कहा कि सभी प्रतिनिधि सुचारू और अधिक मतदान से बेहद प्रभावित हुए। इन प्रतिनिधियों ने चुनाव प्रबंधन की व्यापकता को देखने का अवसर देने के लिए निर्वाचन आयोग का आभार व्यक्त किया और पारदर्शिता, समावेशिता और उत्कृष्टता के लिए आयोग की प्रतिबद्धता की सराहना भी की। निर्वाचन क्षेत्र की जानकारी प्रदान करने की हमारी श्रृंखला में आज हम तमिलनाडु में कडलूर जिले की विरुदाचलम विधानसभा क्षेत्र की जानकारी दे रहे हैं। इस विधानसभा सीट से DMDK, PMK, NTK और DVK के उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।
वृद्धाचलम विधानसभा सीट कुडलूर जिले का महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र है। कुडलूर जिले में 9 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं और कुल 2,46,818 मतदाता हैं। DMDK की अध्यक्ष प्रेमलता विजयकांत के चुनाव लड़ने से वृद्धाचलम सीट महत्वपूर्ण हो गई है। DMDK ने पहली बार DMK के नेतृत्व वाले सेक्युलर डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ गठबंधन किया है। 1952 से लेकर अब तक इस सीट पर कांग्रेस ने 5 बार, DMK, AIADMK और DMDK ने 2-2 बार जीत हासिल की है। तमिलनाडु से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज ऑल इंडिया अन्ना DMK के लिए प्रचार किया। रॉयपुरम में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने मछुआरों की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया और मछुआरों के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी रखने का आश्वासन भी दिया। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता एल मुरुगन ने भी विभिन्न स्थानों पर प्रचार किया। DMK प्रमुख और मुख्यमंत्री स्टालिन ने पुदुकोट्टई में एक रोड शो किया। उन्होंने ऑल इंडिया अन्ना DMK प्रमुख पलनीसामी पर विभिन्न मुद्दों पर राज्य की जनता का साथ न देने का आरोप लगाया। वहीं श्री पलनीसामी ने डीएमके पर राज्य की अर्थव्यवस्था की बदहाली और कम महत्व की योजनाओं पर फिजूल खर्ची का आरोप लगाया। त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद की 28 सीटों पर कल चुनाव होंगे। कुल 173 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या लगभग 10 लाख है। मतगणना 17 अप्रैल को होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत में जन्मी एक मादा चीता ने 4 शावकों को जन्म दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे देश की चीता संरक्षण यात्रा में मील का पत्थर बताया है। बिहार के कटिहार जिले में आज शाम एक बस, ट्रक और पिकअप वैन की टक्कर में कम से कम 7 लोग मारे गए और 18 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना कटिहार के कोढ़ा ब्लॉक में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर हुई। घायलों को नजदीक के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चेन्नई में आईपीएल T20 क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 18वें ओवर में एक विकेट पर 175 रन बना लिए हैं। वहीं न्यू चंडीगढ़ में आज हुए मुकाबले में पंजाब किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हराया। हैदराबाद के 220 रन के लक्ष्य को पंजाब ने 7 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। आयुष शेट्टी बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में आज आयुष ने मौजूदा चैंपियन कुनलावुत वितेदर्शन को 3 गेम के मुकाबले में हराया। फाइनल में आयुष शेट्टी का मुकाबला शी यूकी से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में चीन के शी यूकी ने चीनी ताइपे के चाउ टियन चेन को हराया। मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ तूफान की आशंका व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र, केरल, माहे और भीतरी दक्षिणी कर्नाटक में भी बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना व्यक्त की गई है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, गुजरात, ओडिशा, पुदुच्चेरी और कराईकल में मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति के लिए अमरीका और ईरान के बीच वार्ता इस्लामाबाद में जारी। सरकार ने दोहराया घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए देशभर में कार्रवाई जारी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। प्रधानमंत्री ने तुष्टीकरण को समाप्त करने के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने लोगों से उनकी पार्टी पर भरोसा करने को कहा। और आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।